نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محسن انسانیت، اس میں سے ہم کنٹینیو کریں گے ٹاپک تلواروں کی چھاؤں میں، اور غزوہ بدر کے بعد کے جو حالات تھے اس میں کیا کچھ تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہ موضوع ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے، اور ہمیں اس سے اپنے لیے بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس وقت اس کو سیکھ سکیں. کتاب کے اعتبار سے پیج 414 ہے، اور ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ جب ایک اچانک فتح مل جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس میں بعد میں کئی ایسے معاملے بھی آ جاتے ہیں کہ جو انسان نے سوچے نہیں ہوتے. تو فتح ہو کہ شکست، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حکمت اور کچھ نہ کچھ آزمائش ہوتی ہے. آئیے ہم بک میں سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دین کے راستے میں چلتے ہی رکھنا، چاہے فتح ہو بدر کی طرح یا وقتی شکست ہو احد کی طرح، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. معرکہ بدر کے بعد. معرکہ بدر میں اسلامی ریاست کے ایک مختصر دستے نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اگرچہ قریش کو ایک سبق سکھانے والی شکست دی، لیکن اس کے ساتھ مستقبل میں ایک سلسلہ آویزش واجب ہو گیا. مکہ کی تلوار کے ایک بار بے نیام ہو جانے کے بعد اب قیام امن بغیر اس کے ممکن نہ رہا کہ اس تلوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اسے لہرانے والے ہاتھوں کو شل کر دیا جائے. حریف جب زخم کھا لیتا ہے تو پھر اس کا جذبہ انتقام اس سانپ کی طرح پیچ و تاب کھاتا ہے جس کی دم کچل دی گئی ہو. یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگرچہ قریشی قیادت کی صف سرگرم اور ذی فہم سرداروں سے یکایک خالی ہو گئی تھی، ان کا اقتصادی مستقبل خطرے میں پڑ چکا تھا، اور ان کی طاقت کی جو ہوا بندھی چلی آ رہی تھی وہ پہلی بار کسی قدر اکھڑنے لگی تھی. سوچئے ذرا اپنے اوپر لے کر، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. دیکھیں، کئی سال کی عزت ہاتھ میں پڑ جاتی ہے جب کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے. آج تک تو مکہ والے ہی بہت بڑے تھے نا، اور سب سے بڑی بات ہے پہلا موقع، پہلی چیز جس میں مسلمان مقابلے پہ آتے ہیں اور دشمن سامنے آتا ہے، تو ایک دم ان کی ساکھ تو پلٹی ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو اس چیز کا پوری طرح سے احساس بھی ہو چکا تھا کہ ہم لوگ نقصان پا چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ 70 سردار مارے جائیں. آپ سوچیے ذرا، وہ تحریک یا وہ آرگنائزیشن، وہ انسٹیٹیوٹ یا وہ ملک کدھر پنپے گا دوبارہ کہ ایک دم اس کے 70 لیڈرز مارے جائیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس لیے ایسے لوگ جو ہیں پھر ایسے وقت میں بہت زیادہ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. اور آپ نے اردو میں محاورہ سنا ہوگا، چڑھتے سورج کے پجاری. یہ ایک جملہ لکھ لیجئے کہ انسانوں کی اکثریت چڑھتے سورج کی پجاری ہوتی ہے. جو پلڑا بھاری ہوتا ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. سیاست کی زبان میں بھی یہی ایک اصول اور کلیہ ہے لوگوں کے پاس، اور وہ کیا ہے کہ جس پارٹی کا ذرا سا پلو بھاری ہو لوگ اس کی طرف لڑکنے لگتے ہیں. نقصان تو ان کو ہوا، لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک کلیہ ہے کہ مذہبی، سیاسی یا معاشی اقتدار جس کسی کو حاصل ہوتا ہے وہ اسے بچانے کے لیے آخری بازی تک کھیلتا ہے. آپ سوچیے ذرا، یعنی مرنے سے پہلے بھی انسان خوب جھٹکے لیتا ہے کہ شاید تھوڑی اور آکسیجن اندر آ جائے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے. کبھی اللہ نہ کرے کسی کو بھی کوئی موذی جانور کاٹے، اور یہ جو سانپ کو اگر ادھورا مار کے کوئی چھوڑ دے تو آپ دیکھیے وہ اتنا تڑپتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے تڑپنے کو دیکھ کر کوئی تڑپ جائے. تو کیا پتہ چلا کہ ان کی دکھتی رگ پہ پاؤں پڑ چکا تھا. اور ایسا شخص بہت خطرناک ہوتا ہے کہ جو کسی بھی فتح کی امید میں نکلے اور شکست کھا لے، انا بھی انسان کی ہاتھ آتی ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں مسلمانوں کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا کہ کہیں یہ اسلام کے لیے دوبارہ سے ایک بپھرے ہوئے सांप की तरह निकलना है। और ये भी एक नबी सल्लम की लीडरशिप है कि आप हालात पे बहुत नज़र रखते थे, किधर से फितना उठ सकता है, किधर कोई बात हो सकती है, कौन क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, और दिस एंड दैट। तो अपने लिए अमल की बात रखिए कि कभी भी ऐसे वक्त में जबकि आपको अचानक बहुत फतह ही मिल गई, तो एकदम नशे के में चूर होकर ये नहीं कहना अब हम जैसा कोई हो तो सामने आए। नहीं, हर दफ़ा नई मेहनत, हर दफ़ा अपने आप को पूरी तैयारी के साथ रखना होता है, तो अल्लाह ताला फिर मदद भी करता है। बाज़ दफ़ा फतह के बाद इंसान वक्ती तौर पे बहुत कॉन्फिडेंट होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, हमने कोई प्रोग्राम किया, तैयारी की तो थी जो भी की, लेकिन वो हो बहुत अच्छा गया, अचानक हुआ लेकिन बहुत लोग आए, बहुत डिसिप्लिन रहा, बहुत फ़ायदा हुआ, खाना भी बहुत अच्छा था, हर बंदे के मुंह पे तारीफ थी। अब ये जब हुआ ना तो खुशी भी होती है, लेकिन इसके फौरन बाद एक ख़तरा भी लग जाता है, और वो क्या है कि इंसान अगले प्रोग्राम में ढीला हो जाएगा। वो तब भी तो कर ही लिया था ना, बगैर तैयारी के तो फिर भी हो गया था ना, अब तो फिर भी कुछ तैयारी है। याद रखिए, ये गलती कभी नहीं खानी। अल्लाह ताला बंदे को हमेशा आजमाता है, मदद तो अल्लाह की होती है लेकिन आजमाइश हमारी होती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि हम अपनी कामयाबियों पे अपने ही कंधे ना थपथपाएं, बल्कि अपने आप को हमेशा इस चीज़ में रखिए कि जो भी मदद है वो अल्लाह की तरफ से है। हम बहुत अच्छी तैयारी कर लें या हमारी तैयारी आज अच्छी नहीं है, दर्स तैयार कर रहे थे, तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, चल पड़ी अल्लाह की आस पे, कोशिश तो की थी ना, लेकिन आपके क्या पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बगैर तैयारी के उस दिन मेरा इतना अच्छा दर्स हो गया, तो बस नहीं, तैयारी नहीं छोड़नी, मेहनत नहीं छोड़नी। कई दफ़ा तैयारियों के बाद भी काम सही नहीं होता, आप सारी रात पढ़ते रहते हैं, एंड टाइम पे ज़ुबान ही नहीं खुलती, भटके हुए हैं, जहन इधर है, दिल दिमाग उधर है, सुनने वालों को साफ पता लगेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने रखिएगा। फिर इसी तरह से ये जो तारीख का कुलिया है कि अपने इकतदार को बचाने के लिए इंसान आखिरी हद तक बाजी खेलता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान एक दफ़ा अपनी को साख बना ले तो फिर उसको वाकई उसको बचाना भी चाहिए। खसूसन पुश था पुश से जो तबके और अनासिर समाज पर तसल्लुत पा लेते हैं, वो किसी ऐसी ताकत के लिए जीते जी रास्ता नहीं छोड़ सकते जिसके फ़रोग़ का लाजमी नतीजा इनकी क़यादत के खात्मे की सूरत में रूनमा होने वाला है। वो दांतों और नाखनों का पूरा जोर सर्फ करके आखिरी सांस तक लड़ते हैं। ये दांतों और नाखून क्या आपको पता है? जब कोई कैद होता है ना तो फिर अपने दांतों से काटता है, नाखूनों से किसी को दबोचता है, जब बाकी हथियार नहीं रहते ना तो ये कुदरती हथियार काम आते हैं। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब समझते थे कि बदर की फतह इस्लामी रियासत के लिए दिफाई लिहाज से मुस्तकबिल की कितनी भारी जिम्मेदारियां अपने साथ लेके आई। इसको हाईलाइट करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बात बहुत लाजिम है कि जब आप फतह याब हों, सोसाइटी में आपका नाम आने लगे, लोग मरऊब होने लगे, तो फिर आपको मजीद जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। फिर ये नहीं है कि अब चलो ढीले ढाले लगे हुए हैं तो कर रहे हैं तो कर करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कुरैश अपने पूरे के पूरे मजहबी और सियासी असर, अपने पुराने हलीफाना ताल्लुकात और अपनी मुकम्मल माशी कुव्वत को खपा कर भी अपने इस जंगी फरेरा कहते हैं झंडे को, कभी पहले दौर में ऐसा होता था कि झंडा नहीं होता था तो कपड़ा ही डाल के ऊपर करते थे, तो ये वो फरेरा कैफियत है, यानी ये कह लीजिए कि घरेलू किस्म का झंडा, अपने इस जंगी फरेरे को बुलंद रखने की कोशिश करेंगे जिसे लहराते हुए उनकी फौज मक्का से पहली बार निकली थी। यूं गोया तामीर इस्लाह के दाई और सच्चाई और इंसाफ के अलमबरदार को मजबूर कर दिया गया कि वो तामीरी काम करने के साथ साथ अपनी जमात की मुख्तसर सी कुव्वत को हर आन चुकन्ना और नित नए मार्कों के लिए तैयार रखे। इसको हाईलाइट करें। आज जो नबी सल्लम पे इल्ज़ाम है ना कि आपने जंग के और जो तलवार के ज़रिए इस्लाम पे लाया, तो ये जुमला लिख लीजिए, आप इसके आदी नहीं थे। अगर इसके आदी होते ना तो 13 साल जितना सताया और खपाया गया तो वहाँ तो फिर आप हर बात पे तलवार निकालते। नहीं, आप जैसा तहम्मुल वाला, ठहराव वाला लीडर के जिसने वक्त की नफ्स पे हाथ रखा कि देखते हैं किस वक्त क्या करना है, तो लिख लीजिए कुरैश ने बदर के बाद दोबारा आने की धमकी देकर अल्लाह के नबी को मजबूर किया। कि अब आप ही अपने साथियों को तैयार रखें। ज़ाहरी बात है कि जब कोई कह रहा है हम आ रहे हैं तो क्या बैठे रहेंगे। तो यहाँ से फिर एक जंगों की दाग बेल पड़ी थी। हमारे नबी की आदत नहीं थी, हाँ आपकी ये भी आदत थी कि आप दबते नहीं थे, आप कभी झुक के नहीं रहे कि अच्छा जी फिर ठीक है माफ़ कर दो, माफ़ियाँ दे दो, हम आपकी शरायत मानते नहीं। दिफा करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, बच्चा भी अपना दिफा करता है आप जानते होंगे, आप ज़रा से उसको ऊपर उछालें ऐसे आंखें बंद कर लेगा, तो खौफ तो इंसान की तबीयत में है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी ने फिर तैयारी की, आपको मुझे भी ये चाहिए, खुद नहीं किसी को छेड़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर आप उसको अच्छी तरह से जवाब दीजिए, फिर छोड़िए भी ना उसको, ताकि आइंदा उसको ऐसी गलत बात कहने और सुनने का मौका ना मिले। मार्के बदर से वापसी के बाद 7 रोज़ ही गुजरे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौजी मुहिम लेकर मदीना से माउल कदर, माँ कहते पानी को, कदर कहते हैं गंदा, गंदे पानी का कोई चश्मा होगा या जगह का नाम है, वहाँ जाना पड़ा, जहाँ से इत्तला मिली थी कि बनी सुलेम और बनी गितफान के कुछ लोगों ने जंगी इरादे से कुछ कुव्वत इकट्ठी की थी, मगर हरीफ सामने नहीं आया और 3 रोज़ पड़ाव रख कर आप वापस आ गए। बाद में फिर इन लोगों के जमा होने की खबर आई तो गालिब बिन अब्दुल्ला एक दस्ता लेकर गए, मुख्तसर सी झड़प हुई और मुफसदीन भाग गए। नबी सल्लम जब बदर की मुहिम पर मदीना से बाहर थे तो पीछे बनी कैनका ने माहदा तोड़कर बलवा कर दिया, बलवा वही मारकूट और फसाद कह लीजिए हमला। इतने बड़े वाक़े को नज़रअंदाज करना गोया आइंदा के लिए मदीना को तबाही के हवाले करना था। इसको हाईलाइट करें, कोई मुस्लिम रियासत चाहे वो पाकिस्तान जैसी क्यों ना हो या मदीना जैसी क्यों ना, एक दफ़ा अगर आप दुश्मन की छेड़खानी पे ठंडे रहें कुछ ना करें तो दुश्मन को दोबारा आने का मौका देते हैं। देखिए आपने भी सुना होगा कि चोर कहीं आने से एक दिन पहले उसका रास्ता देख जाता है, हल्का सा कुछ ना कुछ काम कर जाता है, उस वक्त अगर आप उसको पकड़ लेना तो दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह के नबी की ये आदत थी और इसको अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं। अगर आप एक रहनुमा हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक फॉलोअर हैं, एक जुमला बना हुआ है कि निप द ईवल इन द बड, बुराई को जड़ से ही ख़त्म कर दो, अभी सर उठाने लगे ना मेरे को। और आप अपने बच्चों में भी यही रखें, कभी किसी गलत बात पे रिएक्शन लेने में देर ना करें। छोटा बच्चा एक दफ़ा आपके फ़ोन को पकड़ता है या कुछ चीज़ गलत करता है, आंख से इशारे से घूर के बता दें कि गलत किया तुमने, बस अगली दफ़ा ज़रूरत नहीं होगी। ये जब हम शुरू में ढीला कर देते हैं तो बाद में फिर हमसे वो खींचते ही नहीं, ये गलत तरीका होता है। और यही असूल इधर भी दिखता है क्या, कि इसलिए शवाल 2 हिजरी में नबी सल्लम ने इनके खिलाफ फौजी ताकत के साथ एक नौ की पुलिस कार्रवाई, जिसको पुलिस एक्शन कह सकते हैं आप, की और इनकी हस्बे ख्वाहिश सालसी कराई, जिसके फैसले के बमूजब इस अनसर को हदूद मदीना से निकाल दिया गया। ये सालसी कराना क्या होता है, उस दौर में कोई वैसे तो फौज और आर्मी नहीं थी ना बाजाब्ता तौर पर, तो किसी तीसरे को बुलाकर फैसला करवा लेते थे, वही हुआ इधर भी। तो क्या पता चला कि जो सर उठा अल्लाह के नबी ने उसको झुका दिया। मार्के बदर के 2 माह बाद, क्या महीना होगा सोचिए, बदर कब हुई, रमजान में, अल्लाह अकबर कबीरा, कितना कड़ा इम्तिहान था सहाबा का, लेकिन पूरे उतरे माशाल्लाह। जिलहज का महीना आ गया, अबू सुफियान 200 आदमियों के साथ मदीना के इलाके में आए और खुफिया तौर पर सलाम बिन मुशकम से मिलकर जंगी साजबाज करना चाही, मगर कामयाबी की कोई सूरत ना देखकर मुकामे अरीद में दरख्तों को तबाह करके और एक अंसारी को कत्ल करके फरार हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकुब करते हुए करकरतुल किद्र के मुकाम तक गए, मगर गारतगरों का दस्ता भागने में कामयाब हो गया। भागते हुए इन लोगों ने बोझ कम करने के लिए सत्तुओं के थैले गिरा दिए जो इस्लामी दस्ते के कब्ज़े में आए, इसीलिए मुहिम का नाम गज़वे सुवैक पड़ गया, और स्वैक अरबी में सत्तुओं को कहते हैं। सत्तू तो समझते हैं ना, पिसा हुआ जौ का आटा जो पानी में डाल के पिया जाता है। ज़िलहज्जा का बकिया महीना मदीना में गुजरा, लेकिन मुहर्रम 3 हिजरी में इत्तला मिली कि बनू सालबा और बनू महारिब हमले के लिए जमा हो रहे। महीने के आखिर में आप नजद तशरीफ़ ले गए और तकरीबन सफ़र का पूरा महीना इसी इलाके में गुजारा, दुश्मन मुकाबले पर नहीं आया, बग़ैर तसादम के वापसी हुई। इतना वक्त आपने इस गरज से सर्फ किया कि इस इलाके से दोस्ती के ताल्लुकात बढ़ जाएं, ताकि कुरैश इधर से तजारती रास्ता इख्तियार ना करें। इसको भी नोट करें, यह भी एक स्टैटिस्टिक होती है, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मिलने जाना चाहिए कि उनसे दोस्तियां हो जाएं, दिलों में मैल आ चुकी है तो हट जाए, दिल खट्टा है तो वो मीठा हो जाए, आपस में कोई गलत फहमी है तो दूर हो। चलिए यहाँ बैठकर सोचें, किससे आपको उम्मीद है कि उसके दिल में आपके लिए कोई रंजिश होगी? हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी अल्लाह के लिए एक दूसरे को मिलना चाहिए। कभी किसी को इस रास्ते से पीछे होता, हल्का होता देखे, फौरन उसके घर पहुंच जाएं, मत केक का डब्बा लेकर जाएं, खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। जो घर में मौजूद है, चीनी का एक पैकेट ले जाएं, कुछ भी ना ले जाएं, मीठी मीठी बातें करें, दिल साफ़ हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम ऐसे वक्तों में और गलत फहमियाँ फैलाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, खुद जाके बात कर लें, खुद मिल लें। अगर कुछ हो भी दिल में तो मिलने के बाद अल्लाह की रहमत से दिल साफ़ हो जाते हैं। रबी आखिर में कुरैश की तरफ से हमले का अंदेशा हुआ, मदीने में उम्मे मकतूम को कायम मुकाम बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले के लिए जब बहरान के मुकाम तक पहुँचे और जमादिल उला तक सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौजी कैंप में डाले रखा, बगैर किसी तसादुम के वापसी हुई। 3 हिजरी में कुरैश का एक तजारती काफिला फिर निकला, तो इसके मुजवजा, मुजवजा कहते हैं तजवीज़ किया हुआ, यानी नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड, रास्ते में इंतबाह यानी उनको ख़बरदार करने के लिए फ़ौजी नकलो हरकत की गई। जैद बिन हारिसा जमादिय लुखरा में 100 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे। काफ़िले का रहनुमा गाइड फरात बिन हयान गिरफ्तार होकर इस्लामी जमात में शामिल हुआ। 1 लाख दिरहम की चांदी काफ़िले से लेकर जब्त कर ली गई। हालात का ये तसलसल था जो मारका उहद पर ख़त्म हुआ। क्या पता चला कि बदर की जंग का जो असर था लोगों को उससे हटाने के लिए, कुरैश ने काफ़ी छेड़खानियाँ की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदार मक्स लीडरशिप ने, क़यादत ने उनकी बात सुनने ना दी और इस तरह से बदर के असरात बहुत दूर तक गए। आपके मेरे लिए इसमें अमल की क्या बात है? अल्लाह ताला आपको दीन की कामयाबियाँ दे, उस कामयाबी को बरकरार रखिए। आप काम के बाद आराम नहीं कर सकते क्योंकि काम के साथ ही आराम करना है। फैज़ा फरोख्त फनसब, काम के साथ साथ आराम है। हम उहद की फतह के बाद इतनी जल्दी, जितनी जल्दी यहाँ हमने देखा कि अल्लाह के नबी ने इधर उधर काफ़िले भेजने शुरू कर दिए, किसी काम का तसव्वुर भी करें तो हमें खुद पे रहम आता है। फिर करना है, हर और मसले हैं, अभी तो फारिग हुए थे। तो वही बात है कि मोमिन कभी भी फारिग नहीं होता, ऑन जॉब होता है। क्या करना है फारिग रहकर? आप सोएं, हाँ कितना को सोएंगे, फिर और सोएं, नहीं, अभी और सो जाएं, नहीं अभी और सो जाएं, एक वक्त आएगा आपका जिस्म दुखने लगेगा। और क्या दिल करता है, खाएं पिए, खाइए और लीजिए ना, और लीजिए ना, कितना को लेंगे? बाद में आपको गुस्सा आएगा उस बंदे पे जो आपको फोर्स करेगा, क्योंकि आपके पेट में अब जगह नहीं रही। हाँ, आराम की बेखद होती है, खाने की बेखद होती है। आप घूमने जाएं, रोज़ नई पार्टी, रोज़ नई, तीसरे दिन आपका दिल भर जाएगा। अक्सर लोगों को मैंने सुना है शादी का जो आखिरी दिन, जिसको हमारे यहाँ वलीमा या कुछ और के, तो उस वक्त तक थक चुके होते हैं, हाय थक गए हैं, रोज़ कपड़े बदल रहे हैं, रोज़ रातों को जा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। तो इंसान इतना कमज़ोर है कि दुनिया की इंजॉयमेंट के नाम पे जो चीज़ें ना, वो भी रोज़ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ आप रोज़ कर सकते हैं जिससे आप कभी नहीं दिल भरता आपका, मफर नहीं, वो रात दिन सुबह शाम, वीक डेज वीकेंड, छुट्टियाँ ना छुट्टियाँ, और वो ये किताब है, ये दीन है, सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना। इसमें आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करते, इसके अलावा हर चीज़ से बंदा थक जाता है। अल्लाह ताला हमें बड़े मकसद के लिए जीने वाला बना दे। तो यहाँ पे ये टॉपिक तो पूरा हुआ,